नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान के भक्तों की परम करुणा और कृपा से हम अभी बहुत ही दिव्य स्थान पर आए हैं। इसका नाम है भांडीर वन। और भांडीर वन के भीतर बहुत सारी लीलाएं एक साथ हुई है, यानी बहुत सारी लीलाओं का ये एक स्थान है। जैसे इसका नाम भांडीर वन है तो ये भंडारा ये शब्द से आता है। भंडारा, भंडारा मतलब क्या, जो सबको प्रिय होता है। भंडारा मतलब भोजन। पब्लिक पंगत लगाते हैं ना लोग, उसको भंडारा कहते हैं। जैसे कोई पूजा हो गई तो भंडारा होता है, कोई भागवत हो गई तो भंडारा होता है। तो ये भंडारा यानी भोजन का स्थान, जहाँ भोजन वितरित किया जाता है। तो ये भगवान के और भगवान के सखाओं का भोजन करने का प्रिय स्थान है। यहाँ पर भगवान नित्य रूप में आकर अपना भोजन करते रहते हैं। जब गौचारण में आते हैं ना, गौचारण मतलब जब गाय चराते हैं, तो यहाँ पर भी आते हैं। पर यहाँ पर आकर गौचारण करने के बाद यमुना जी भी बहुत पास में, यहाँ पर यमुना जी में स्नान करके फिर बैठते हैं। कमलाकार गोल कमर की तरह बैठते हैं, बीच में कृष्ण बलराम बैठते हैं और फिर भोजन करते हैं। कमलाकार में जब बैठते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि सबको भगवान का मुख ही दिखता है, सिर नहीं दिखाई देता। अब मैं अगर बैठूंगा कमलाकार तो कुछ हाफ लोग मेरी पीठ देखेंगे। लेकिन भगवान का ऐसा लीला है कि भगवान जहाँ पर भी बैठते हैं सबको लगता है मेरी ओर ही देख रहे हैं, तो उनकी विशेषता है। ये एक लीला हो गई, इसको छाक लीला भी कहते हैं। छाक लीला का अर्थ ये है कि जब भगवान के पास छोटे बछड़ों बच्चियों का जिम्मेदारी दिया था ना, तो जब छोटे थे तो बछड़े और बच्चियों का जिम्मेदारी दिया था, और वो कुछ ही अंतर तक जाने का उनको परमिशन था, बहुत दूर जाने का परमिशन नहीं था। और वो लंच के समय उनका गौचारण जो बछड़ियाचारण है वो समाप्त होता था। मतलब गौचारण किया तो पास पास के विलेज में, और नंद भवन में यशोदा माई जो है ना उसका एक रूल था, वो टॉप में जाएगी सबके घरों के में, और वहाँ से चारों दिशा में उसकी नज़र कहाँ तक पहुँचती है वहीं तक जाना है। गौचारण में वत्सचारण मतलब वत्स यानी बछड़ा बछिया, ये वो छोटे बछड़ों का बच्चों का चराने का नियम था। और वो लंच के समय पर उनका गौचारण समाप्त होता था। लेकिन जब भगवान 5 साल के हुए तो उनको बड़ी गायों का जिम्मेदारी दिया गया, बड़े गाय और बड़े बैल, क्योंकि तो गायों ने और बैलों ने मिलकर बहुत जिद किया अपने गौचारण लोगों के पास, बाल पालों के पास, कि हमें अभी कृष्ण के साथ जाना है, अभी कितने दिन आपके साथ जाएंगे, हमारे बच्चे हैं उनके साथ जा रहे हैं, तो वी वॉन्ट टू गो। हाँ बोलेंगे गाय कैसे बोल रही है। वृंदावन धाम में जब कृष्ण थे तभी सभी जीव बोला करते थे, वृक्ष भी बोला करते थे, पंछी भी बोला करते थे, गाय मोर सब लोग बोला करते थे। सब लोगों का भगवान के साथ में संवाद हुआ करता था। तो गाइया और बैल ग्वाल बालों को जिद कर रहे हैं कि अभी हम उनके साथ जाना चाहते। तो फिर वो ब्राह्मणों का मुहूर्त निकाला गया और फिर कहा गया कि गोपाष्टमी कार्तिक वद्य अष्टमी, इसमें कार्तिक शुद्ध अष्टमी जो है बहुत पवित्र है, तो ये 7वें दिन निर्णय लिया गया और अष्टमी के दिन ये तय किया गया। और 7वें दिन जो है वो ग्वाल बालों ने कृष्ण भगवान को बहुत चिढ़ाया कि देखो देखो अभी इतने बड़े हो गए और फिर भी तुम्हारे ऊपर बड़े गाय की जिम्मेदारी देने की उनको हिम्मत नहीं हो रही, अभी तक आप योग्य नहीं हो उसके। आपको नहीं, आपको नहीं दिया जा रहा है। तो उनको बहुत दुख हुआ उस दिन, बहुत दुखी होकर घर लौटे, क्योंकि इतना उन्होंने पीड़ा उनको दिन भर। लेकिन उसी दिन घर पे डिस्कशन चल रहा था कि नेक्स्ट डे उनको देना है जिम्मेदारी। इसलिए आपको हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा दुख नहीं करना चाहिए। अगर दुख नहीं करते तो अगले दिन खुशी तो होने वाले थे ना, लेकिन नहीं था पता उनको, इसलिए अगले दिन आने वाली खुशी होने पर भी आज दुख को अनुभव कर रहे हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रिंसिपल, जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसलिए आज दुख का अनुभव हो रहा है फिर भी विश्वास रखो कि ये अच्छे के लिए हो रहा है। आज बस मिस हो गई तो उसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ। तो नेक्स्ट डे सवेरे उनको बड़ी गायों का जिम्मेदारी दिया गया और उस दिन से उन्होंने गौचारण, एक्चुअल गौचारण शुरू किया। इसका मतलब क्या होता है, दूर दूर वनों में जाना है। अभी अभी 9 to 12 तो क्या है वो होता ना नर्सरी का काम नहीं है, अभी फुल स्कूल है 9 to 5। सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, सूर्योदय में जाएंगे सूर्यास्त में आएंगे लौट के। तो मैंने कल आपको कथा बताया था, शायद आपको नहीं बताया, उनको बताया यात्रा में। वो मैया आई और बोली कि जूता पहन लो, दूर जाना पड़ेगा ना, अभी कांटे लगेंगे, पंचर लगेंगे, पत्थर लगेंगे, तो पैर में इतने मुलायम मुलायम मक्खन जैसे पैर हैं आपके। उन्होंने कहा नहीं पहनेंगे, अगर आपके पास 30 लाख जूता है, क्योंकि 9 लाख गाय हैं, हर एक के 4 पाँव हैं, कितना जूता लगेंगे? 36 लाख जूता है और 9 लाख छतरी है, तो हम भी छतरी और जूता धारण करेंगे। तो भैया ने कहा हमारे पास इतना इंतजाम नहीं है, 2 जोड़ी जूता है, 2 छतरी है। तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तो ये सुनकर सभी गायों ने, ये सुन रहे थे ना कि अभी कन्हैया जूता पहनने वाले नहीं है, तो वो सब जगह भागे जब तक की चर्चा चल रही है। और अपने वो तो होते हैं ना, उनके पैर के खूर होते हैं ना हार्ड एकदम से, उसे कूट कर सारे जितने भी कंकर कांटे पत्थर थे वो सब मुलायम मक्खन जैसे बना दिए, कैल्शियम पाउडर। और वो करते समय भी उनके मन में इतना प्रेम था उनके लिए, तो थनों से दूध भी टपक रहा था, टप। तो एक तो फाइन पाउडर, उसमें से दूध, तो क्या हो गया, मक्खन जैसा मुलायम और शीतल सब जगह बन गया। ये पता नहीं है कि कौन सी दिशा में जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे तो भी सब जगह मुलायम होना चाहिए। सब जगह कूट कर वापस आकर खड़े हो गए जैसे पहले खड़े थे। जैसे 108 झुंड है उनके, कोई सफ़ेद गाय है, कोई काली गाय है, कोई भूरी गाय है, कोई सफ़ेद पर ब्लैक डॉट है, कोई ब्लैक पर सफ़ेद डॉट है, कोई वाइट पर ब्राउन डॉट है, ब्राउन पर वाइट डॉट है, किसी के इधर वाइट डॉट है तिलक की तरह, उनका नाम तिलक नहीं है, किसी किसी का मुंह मृगन की तरह है तो मृगन भी नाम है। ऐसे 108 अलग अलग गायों के झुंड है उनके, बैलों के झुंड अलग हैं, और भैंसे भी थी और बकरियाँ भी थी। और जब बड़े गाय चालू कर दिया जाने का, तो छोटे गायों ने बंद नहीं किया, वत्स भी चलने लगे साथ में, वत्स भी चल रहे हैं, बकरियां भी चल रही है, सब चल रहे हैं। अरे कौन छोड़ेगा कृष्ण का साथ, अभी एकांत में अगर वन में जाकर खेलने का मौका मिल रहा है, रोज पिकनिक बनाई जा रही है, तो कौन छोड़ेगा उसको। तो साथ के शब्द पर ये सब बात निकली थी। तो साथ का मतलब है कि जब दूर दूर जाने लगे भगवान कृष्ण, तो बीच में लंच ब्रेक आता है ना, तो लंच ब्रेक में सुबह कुछ देंगे उनको, डंडे में ऐसे बांध के देंगे वो पोटली, और वो बीच में आपको नाश्ता कलेऊ बाल भोग करने के लिए। और लंच के समय पर गोपियाँ ऐसे आएंगी ढूंढते ढूंढते, स्वयं से वन में गए ठाकुरराज, और फिर वहाँ उनको ढूंढ के निकालेंगे, तरीके से अपना सामान निकाल के सबको खिलाएंगे। उसको कहते हैं छाप। तो छाप लीला का भी ये बहुत प्रिय स्थान है उनका, यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण है, सुंदर सघन वृक्षावली है, कितना सुंदर वृक्ष है, अभी देखने को मिलेगा बॉम्बे में आपको। ये भी छोटा हो गया, अभी इससे भी बड़ा विस्तार था उसका, ह्यूज। ये जो पेड़ है ना, इसका नाम भांडीर वट है, भांडीर वट, भांडीर वन का वट, बनीन ट्री। इसके बारे में ऐसा वर्णन शास्त्र में आता है कि इसकी शाखाएं मथुरा तक इस तरफ और नंदगांव तक उस तरफ पहुंची थी, यमुना के पार करके मथुरा तक। तो ग्वाल बाल गौचारण करते थे, कभी कभी एरियल गौचारण करते थे, मतलब गाय नीचे चल रही है, ये शाखा पर चल रही है, ऊपर से उसको फिर फिर हल्या हल्या फिर फिर चल रहे हैं, ऐसे भी करते थे। तो कभी कभी जमुना पार भी जाते थे, शाखाओं पर चलते, शाखा ऐसे फैली हुई है ना, अभी खाली कल्पना ही कर सकते हैं हम लोग, और आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे क्या प्रभु जी बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ बोलते जा रहे लेकिन ये सब हुआ करता था। हाँ, शास्त्र में लिखा है, नारद मुनि बता रहे हैं और बड़े बड़े संत बता रहे हैं, गर्गो मुनि बता रहे हैं, झूठ कैसे बोल सकते हैं, उनको शौक है आपको बहकाने का। तो ऐसे ये वृक्ष इतना विशाल था, वैसे ही गोवर्धन में भी वृक्ष था, एक नंदगांव में वृक्ष था, एक वृंदावन में था, सब ऐसे चलते थे। यूज अपना कोई फ्लाईओवर बन जाना, फ्लाईओवर बहुत दूर तक, ये उनका फ्लाईओवर नेचुरल था, पहले ऐसे ही चलता था। कितना आनंद रहा था उसके अंदर, इतनी घनी वृक्षावली में आप चल रहे हो और सब लोग चल रहे हैं, उनकी गाय चल रही है, उनके गीत गाए जा रहे हैं, पुंगी बजाई जा रही है, मुरली बजाई जा रही है। तो ये पेड़ का महात्म्य है बहुत। आप जरा गिनना कितनी कहानी बताया मैंने, एक पहला बताया क्या, भांडेर वन भोजन की थली, एक हो गया। दूसरा क्या बताया, वृक्षों का महानता बताया, कितने वृक्ष महान थे। तीसरे भांडेर वन की लीला बता रहा हूँ, ये पेड़ जो है इसके नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि अरे इन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, किया कि नहीं किया, बोले एक प्रश्न था। तो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं किया, सोचते क्यों नहीं किया, वहां जाके तो 16,108 पकड़ लिए, तो यहाँ पर इतने करोड़ों गोपियों को रोते हुए छोड़ दिया। तो उत्तर उसका यह है कि भगवान की वृंदावन में गोपियों के साथ विवाह हुआ भी है और नहीं भी हुआ, दोनों साथ में, एक साथ में, ये दोनों ट्रुथ जो है ना वो साथ में एग्जिस्टिंग है। उसको कहते हैं कि कृष्ण लीला के अंदर सारे विरोधाभास एक साथ रहते हैं, ऑल द कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स एग्जिस्ट टुगेदर इन कृष्ण लीला। कैसे ये हमको नहीं पूछना, जब उनको मिलेंगे ना कभी मुक्ति होने के बाद तो उनको ही पूछ लेना कि ये ऐसे कैसे करते हैं। अभी समझना जरूरी इतना है फिलोसॉफिकली कि ऑल दी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर एट वन प्लेस एट वन टाइम बाय कृष्णा की मर्सी। तो पांच जगह उनका विवाह हुआ है, इसका भी प्रमाण शास्त्र ने दिया। एक है भांडिर वन इस वृक्ष के नीचे, दूसरा है वृंदावन, तीसरा है संकेत वन, तीसरा है बरसाना और नंदगांव। तो पांच जगह पर उनका विवाह हुआ है और दो जगह पर एक कॉमन प्रीस्ट थे पुरोहित ब्रह्मा जी, यहाँ पर और संकेत वन में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह किया। और एक शास्त्र में वर्णन राधा रानी के ससुराल के निवास का वर्णन भी दिया गया है, और कॉमन शास्त्र में जो सुखदेव जी महाराज ने बताया है उसके अंदर सारी विरह की लीला बताई है और विवाह हुआ ही नहीं है, ऐसे वातावरण का वर्णन किया गया है। अब नंदगांव जाएंगे तो क्या देखेंगे, वहाँ बहू बनकर राधा रानी मर्यादा से बाजू में खड़ी है बहू बनकर, और शास्त्र में पढ़ते कि इनका विवाह हुआ ही नहीं। तो कृष्ण भगवान छोटे से थे, राधा रानी भी छोटी थी, तो छोटे कृष्ण भगवान को गोद में लेकर नंद बाबा घूम रहे थे उसकी वन के पास पास। तो राधा रानी वहां से आ रही थी अपने सखियों के साथ, तो अचानक ना बहुत बादल आए, बहुत घनघोर अंधेरा छा गया, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली कड़कने लगी, ऐसा एकदम बहुत डरावना एटमोस्फियर हो गया। तो नंद बाबा थोड़े घबरा गए, भी घर कैसे पहुंचे, लाला को हाथ में लेकर आ रहा हूँ। तो पता नहीं उनको क्या लगा, राधा रानी सामने से आई, उन्होंने कहा ले लो लाला को, ले लो आप ही संभालो इसको। तो राधा रानी उनको ले लिया अपने पास, और वो इतना अंधेरा छा गया, इतना बिजली कड़कने लगी कि कुछ दिखना ही बंद हो गया। उतने में राजा रानी भांडेर वन के अंदर प्रवेश कर गई, और तब तक ये सब लोग ओझल हो गए नजरों से, कहीं पता नहीं चला कहाँ गए राजा रानी। राजा रानी इस वन में आई, इस पेड़ के पास आई, और दोनों ने 16 साल के उम्र वाला शरीर धारण किया, जो गौलोक में विराजमान रहता है ना हमेशा। नित्य दर्शन क्या है उनका, 1600 वर्षीय दर्शन, 16 ईयर जो उनका फॉर्म है, किशोर अवस्था कहते हैं, उसका दर्शन वहाँ पर होता है, उसी फॉर्म में आ गए वो दोनों, बालक थे ना ऐसे बड़े हुए, और दोनों ने परस्पर श्रृंगार किया एक दूसरे का, इन्होंने उनको दुल्हा बनाया, इन्होंने उनको दुल्हन बनाया। जब श्रृंगार पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, देवता लोग प्रकट हो गए, कुंड बनाया गया, ब्रह्मा जी पुरोहित बने, सामग्री एकत्र किया और दोनों को बिठाकर दोनों के बहुत सारे मंत्र बुलवाए गए, ग्रंथि बंधन किया गया, चित्र धारण किया गया, हाँ, और वरमलाएं पहनाई गई, और फेरे भी किए गए। इस तरह से इसी पेड़ के नीचे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह किया। तो फिर उसके बाद में बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा 10 कहानी बताने तो थोड़े नहीं बता रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी भगवान के अंश हैं, वो भगवान के सेवक हैं, तो बड़ा अपने आप को धन्य मान ले कि आपकी विधा विवाह से आपकी पृथ्वी की वृंदावन की लीला के बीच में मुझे पौरोहित्य करने का भाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्य हो गया आपकी सेवा में, आपकी लीला का सहायक बना मैं। तो मित्र ने कहा कि आप पुरोहित हो तो दक्षिणा देनी चाहिए ना आपको विवाह करने के बाद, तो दक्षिणा क्या चाहिए आपको। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें आपके जुगल जोड़ी के चरणों की प्रेम भक्ति हमेशा प्राप्त होती है। भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को निरंतर प्रेम भक्ति प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। तो यही वो पेड़ है जिसका साक्षी है, उसके नीचे आधा रहने का विवाह हुआ कृष्ण भगवान के साथ। उसके आगे ऐसे जगह है, दो पेड़ जहाँ मिलते ना तो मंडप जैसी व्यवस्था है, वहाँ पर वहाँ से कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ प्रवेश किया। तो इसके बाद में वो यज्ञ कुंड वगैरह छोड़ के सब देवता लोग लुप्त हो गए, ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, और इस वन में पूरे अभी पूरे श्रृंगार किए हुए राधा और कृष्ण हैं दुल्हा दुल्हन। तो जैसे इस वन में उन्होंने बहुत अकेले श्रृंगार किया, फिर लीला किया। उसके बाद में वो यहाँ से यमुना जी चले गए और जमुना जी ने उन्हें छलांग लगाई और जमुना जी ने स्नान किया। उसके बाद में फिर श्रृंगार किया, फिर इनकी इन्होंने कमल उठाया, इन्होंने बंसी उठाई, तो राधा रानी ने उनकी बंसी चोरी कर ली, इन्होंने उनका कमल छीन लिया। फिर उन्होंने बहुत ऐसा प्रेम से वाद विवाद किया, आप मेरा कमल लौटा दो फिर मैं आपकी बंसी लौटा दूंगी। फिर उन्होंने बहुत भागा दौड़ी की, फिर दोनों ने वापस दे दिया। फिर वहाँ से वो नंदगांव चले गए, वहाँ से काम्यवन चले गए, वहाँ से चरण पहाड़ी चले गए। बहुत सुंदर सुंदर बहुत देर तक उन्होंने लीला किया। इट्स लाइक डिवाइन हनीमून। तो बहुत देर तक चलते रहे इनका एकांत में, कोई पति नहीं, कोई साथ में कोई नहीं, दोनों ही आनंद ले गए और घूमते घामते फिर वापस भांडेरवन के पास आ गए और बालक रूप धारण किया। राधा रानी ने कृष्ण को अपने गोद में लिया और फिर जो नंदगांव तक गई और नंदगांव तक कृष्ण को पहुंचा गया। तो नंदमा बड़े खुश हो गए, कितनी जिम्मेदार लड़की है, देखो मैंने इतनी बीच आंधी में उसको अपने बालक को दिया था, हाँ इतना समझ बूझ के सुरक्षित रूप से उसको संभाल के घर पे लौटा दिए। इससे बड़ी बहू हमारे लाला के लिए कौन हो सकती है। और लाला कैसे हैं, इतने से रूप में पापा छोटे रूप में आए और घर चले गए। तो ये उनकी विवाह की लीला है, बहुत सुंदर विवाह की लीला है। कहते हैं कि हम उनकी विवाह की लीला का श्रवण करेंगे ना तो हमारे हमारे विवाह के जीवन में हमारी जो आसक्तियाँ हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। हमारे जीवन में जब हम विवाह का कार्य करते हैं और गृहस्थी चलाते हैं, आपको मालूम है ना कितना कितनी डिफिकल्टी होती है, कितना समस्या है, कितने कष्ट करने पड़ते हैं। और सोचा था क्या और क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। कितने दर्द भरे गीत गाते हैं लोग और दर्द भरे गीत गाने के बाद सुनने वाले तालियां बजाते हैं उसके क्योंकि वास्तव में ये गृहस्थ आश्रम जो है ना वो पवित्र आश्रम है, बहुत श्रेष्ठ आश्रम है, भगवत धाम तक पहुंचाने वाला आश्रम है। लेकिन बीच का रास्ता बहुत ना पक्का नहीं है बहुत कांटे कंकड़ ऐसा टूटा फूटा रहता है, ऐसे ऐसे शॉट, कभी कमर टूटती है, कभी कुछ टूटती है, कभी गर्दन टूटती है, क्या क्या होते रहते हैं। और बहुत सारे मीठे कड़वे अनुभव आते रहते हैं और आसक्ति की वजह से हम चलते रहते हैं, विराट के ट्रेन में लटकते हैं, चर्च के ट्रेन में लटकते हैं, क्या क्या लोन चुकाते रहते हैं। और फिर वो बच्चे बड़े होते हैं फिर उनको देखते नहीं है, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो सोचा सोचा था क्या क्या हो गया, ये बच्चा संभालेगा ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन अभी कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का प्यार, सब कसमी मादे सब झूठ। ये सब जो हमारा अनुभव है इसका पैकेज आप करेंगे तो एक कृष्ण की लीला विवाह की लीला सुनेंगे तो सब नष्ट हो जाए। इसलिए कृष्ण की लीला सुनना बहुत आवश्यक। तव कथामृतम सप्त जीवनम, हमारे जलते हुए जीवन में कृष्ण की लीलाओं का श्रवण ये सबसे बड़ी ऐसी विधि है जिसे आप तत्क्षण उस क्षण के दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो ये लीला हुई भगवान के विवाह की। कितने हो गए उसके बाद में जब एक बार भगवान यहाँ पर आए थे, ग्वाल बालों के साथ गाय चराते चराते भोजन किया, उतने में ना वो प्रलम्बासुर आ गया। प्रलम्बासुर तो क्या गेम चल रहा था उनका, ऐसे कुछ खेल रहे थे दो पार्टी करके, कृष्ण की पार्टी बलराम की पार्टी और कृष्ण की पार्टी में डिवाइड करके। तो कृष्ण की पार्टी हार गई और बलराम की पार्टी जीत गई। तो उनका तय था कि जो जीतेगा वो हारे हुए लोगों के कंधे पर बैठेगा, एक एक नहीं सब लोग जितने हारे हुए सब बैठ जाएंगे उसके ऊपर। तो पूरी मंडली चलेगी और वो हैट 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 करेंगे और उनको लंबा चक्कर लगा के फिर उनको अपना हारने वाला जो दंड है वो देना है। तो कृष्ण की पार्टी हार गई तो कृष्ण ने सुदामा को अपने कंधे पर लिया, उसमें भी वो वाद विवाद हुआ। अरे तू कन्हैया ठीक से चला पाएगा ना मुझे कि नहीं चला हो? तो कन्हैया बोले नहीं 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 अभी तुम इतना भारी है तू, मैं कैसे चलाऊंगा तुम्हें। बोले कल तो जब मैं हार गया था तो तुमको चढ़ाया था, तभी मैं तुमने कुछ कष्ट नहीं दिया, तब तो पूरा लंबा चक्र चलवाया। आज तुम हार गए तो रो रहे हो, ऐसे बात करते करते बैठ भी गए उस सर पे चलने लगे। तो ना वो कृष्ण की पार्टी में राक्षस घुस गया था ग्वाल बाल के रूप में, उसका नाम था प्रलम्बासुर। वो हारे हुए पार्टी में जाकर क्या किया, बलराम जी को कंधे पर बिठा दिया। क्या विचार था उसका, अरे ये जो बलराम जी को पूरा निमचा लेते हैं तो देखते हैं कृष्ण के लिए क्या करते हैं। तो सब लोग चलाने लगे, सब लोग अपना आनंद ले रहे हैं, मजे से चल रहे हैं, हैट कर रहे हैं। और ये जो है ना ये बहुत दूर लेके जाता था बलराम जी को, मतलब जितना राउंड देने का था उससे बहुत दूर चला गया। आपको अच्छा लगेगा लंबा राउंड दे रहे हैं, बाद में पता चला कि अरे सबको छोड़कर बहुत दूर लेके आया मुझे। तो एक शास्त्र में लिखा है कि यहाँ से दिल्ली के रास्ते पे जगह है पलवल, पता है कितनी दूर है यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से दिल्ली के रास्ते पर। वहां तक ले गया वो, तब बलराम को समझे आया अरे ये तो गलत गड़बड़ हो रहा है। तो उसने देखा और फिर चुनौती दिया उसको, कौन हो तुम? तो तुरंत उसने ना अकराल विकराल रूप धारण किया, आकाश तक सर पहुंच गया उसका, लाल दाढ़ी उसकी, लाल आंखों की कोयले की जैसी आंखें, बड़े बड़े नीच नकदार कान थे, दांत ऐसे बाहर निकल गए, सब भयंकर शरीर था उसका और वो भी मारने के लिए तैयार था। तो बलराम जी सर पर थे उसके नीचे कूदे, बलराम जी बड़े हो गए, उन्होंने सर पे एक जोर से मुक्का मारा उसके। ऐसा वर्णन आता है कि जैसे कोई पर्वत पर जब ज्वालामुखी होता है ना और लावा रस निकलता है ना उसको फटके ऐसे, वैसे ही उसका सर फट गया और खून की धार बही और वही उसका देहांत हो गया। बोलो वो प्रलम्बासुर वध करने वाले बलराम जी महाराज की। तो उस जगह का नाम पड़ा प्रलम्बासुर वधस्थल, यानी आज का पलवल। शॉर्ट फॉर्म होता है ना कुछ देर के बाद में हर चीज का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, अपभ्रंश कहते हैं उसको संस्कृत में, अपभ्रंश हो जाता है उसका। तो प्रलम्बासुर वधस्थल इसका अपभ्रंश होकर आज पलवल हो गया है। इसलिए ब्रज जो है ना वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसको एक्सटेंडेड ब्रज कहते हैं। आगरा में भी ब्रज फैला हुआ है, उसको अग्रवन नाम दिया गया है। इधर भी एक हाथरस नाम की जगह है, यहाँ पर एक गोपी ने कृष्ण के गोवर्धन लीला में भोजन बनाया था लेकिन वो गई नहीं, वहाँ पर अपने घर के बाहर पर्वत लगा दिए उसने अन्नकूट। तो कृष्ण ने बहुत सारे हाथ अपने बना दिए ना उसके विकराल रूप में, तो एक हाथरस तक फैला दिया और वहाँ से भी ऐसे उठाकर खा लिया, इसे सलाम पड़ा हाथरस। एक पीछे थी बदरौला जो बरसाने के पास रहती थी, उस गाँव का नाम बदरौला पड़ा हुआ है। तो बदरौला ने भी कहा मैं भी नहीं जा सकती इतनी दूर इतने भयंकर बारिश में, तो उसने भी अपने घर से बाहर बना कर थे। तो भगवान ने पीछे हाथ किया क्योंकि गोवर्धन के पीछे है ना बरसाना, पीछे हाथ एक्सटेंड किया वहां से भी उठा के खा लिया। ऐसे दिल्ली तक ब्रज फैला हुआ है ऐसे हमारे गुरु जी बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी भगवान गए हैं और लीला किया है, तो दिल्ली तक ब्रज फैला हुआ है। लेकिन जो प्रमुख ब्रज है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए, तो प्रलम्बासुर का वध हो गया तो सब लोग सोच रहे थे बलराम जी कहाँ गए, अरे खेल खेल में तो बलराम जी गायब हो गए। तो बलराम जी लौट के आए, हम बताया ऐसे ऐसे हुआ, यो हुआ वो हुआ मैं मुझको वो ले गया वहाँ पे, कुछ देर बाद धाम में आयो तो वो राक्षस था, मैंने आपको मार दियो। सब लोगों ने बलराम जी दे जय जयकार की और सब लोगों ने भोजन किया और वो सो गए। कैसा है ना वो पिकनिक में कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं होता है, जब चाहे खा लो सो लो आराम से, प्रक्रिया कर रही है, उठो चुपचाप मस्ती कर लो, गुल्ली खेलो, गिट्टी डांडू खेलो, पानी में कूदो, कभी पक्षी की पक्षी उड़ रहा है तो उसकी खाया के भी चिल के भागो। हम लोग सब लोग बच्चे अभी व्हाट्सएप देख रहे हैं दिन भर, 6 फीट के अंदर बैठ के देख रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं माइक्रोवेव से, है ना? वैसा नहीं है, वो डाली पे ऐसे ऐसे होते ना पकड़ के, ऐसे 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 ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर कोई छोड़ देता तो वो ऊपर चला जाता है, फिर वो नीचे आते हैं। राधा रानी कहते हैं चलो मुझे चढ़ा दो, तो कृष्ण डाली को लेते हैं और पकड़ के रखते हैं, और राधा रानी फिर पकड़ के उसको फूल निकालने की कोशिश करती है, तो कृष्ण डाली को छोड़ देते हैं, जूम, राधा रानी आकाश में लटक रही है, अरे कन्हैया क्या कर रो है। ऐसे उसको कहते हैं ऑर्गेनिक हैप्पीनेस, ऑर्गेनिक गेम्स विद ऑर्गेनिक हैप्पीनेस, नो केमिकल एंड माइक्रोवेव हैप्पीनेस। सब लोगों को विचार करना चाहिए इसके ऊपर, इतना घंटा दिन में बर्बाद करते हैं हम लोग उसके अंदर, प्रकृति का आनंद कौन लेगा? तो वहां पर सब प्राकृतिक आनंद लेकर, ऐसे पत्ते ना इसके पत्ते के दोना बनाते थे, उसके अंदर खाते थे दही मक्खन वगैरह, सोचो आप, सच एंड ब्यूटीफुल सिचुएशन। सो गए तो उठने में ना उनको गरम गरम लगने लगा बहुत ऐसा अचानक, तो उठ के देखा तो क्या चारों तरफ आग लगी हुई है, ऐसे सोचो कि बीच में आप सो रहे हो, चारों तरफ वड़वा, वड़वा मतलब फॉरेस्ट फायर, उसको दावानल कहते संस्कृत में, दावानल। सब लोग गाय रोने लगी, तो सब लोग उठे, कृष्ण भगवान उठे, देखा तो अरे चारों तरफ आग है, सब लोग रो रहे हैं बचाओ कन्हैया बचाओ, कन्हैया उठ गए, स्टैंड ले लिया उन्होंने अपना पोजिशन, और ऐसे मुंह का चब्बू बनाया और सक करना शुरू किया, तो पूरा अग्नि जो है ना वो खींच लिया, बच्चे रहे घर क्या कर रहे हैं, हम लोग पानी मारेगा फिर रेती लगाएगा उसके अंदर कुछ करेगा, सब लोग मिलके रेती लगाएंगे, अरे कुछ नहीं आराम से बचे रहो, पूरा ऐसा मुंह खोल के खींच लिया, सारा अग्नि चारों तरफ से इकट्ठा होकर मुंह में चला गया, और मानो कुछ जलने की निशानी नहीं, कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल। देखो ना अभी आपका दोस्त अगर छोटा सा अगर आग पी लेगा तो आप क्या बोलेंगे उसको, तेजाब पी लेगा समझो, आग पी लेगा तो कैसे रहेगा? तो सब लोग ना बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत खुश हो गए, लेकिन दे वर वेरी सरप्राइज एंड वेरी वेरी अचंभित थे वो सब लोग। तो घर पे जाके बोला, वो जो भाग के पहुंचते ना घर पे, आज सब लोग ना मतलब खुश थे लेकिन बहुत ऐसे सरप्राइज के मूड में थे, ये ऐसे कैसे हो सकता है कन्हैया ने आग पी लिया। सबसे पहले जाकर बताया मैया बाबा को, आज कन्हैया ने आग पी लिया, तो मैया बाबा को वो टेंशन आया, ये बालक वो पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब क्या करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, व्हाट ही विल डू इज अनप्रेडिक्टेबल, बहुत रिस्की लड़का है ये। तो कृष्ण को बहुत डांट पड़ी, तुम आग पीते हो, हाँ भोजन नहीं मिलता है तुमको, और तो मिलता नहीं है, मैं साग बेचती हूँ घर पे, क्या हुआ उसका, क्यों शरारती करते हो? उनको थोड़ा पता था कि राक्षस जो था वो अग्नि के रूप में आया था कंस की तरफ से, एक एक व्यक्ति अलग अलग रूप धारण करके आ रहा है, कोई बछड़ा बन के आ रहा है, कोई ग्वाल बाल बन के आ रहा है, कोई ये बन के आ रहा है, कोई वो बन के आ रहा है, कोई ऋषि बन के आ रहा है, कोई लड़की बन के आ रहा है, कोई बैलगाड़ी बनकर आ रहा है, कोई बवंडर बन के आ रहा है, साइक्लोन के रूप में आ रहा है। सो डिफिकल्ट ना, यू डोंट नो कि आज भाई अनाउंसमेंट हो गया है बवंडर रूप में आने वाला है, तो उसका डिफेंस बना के रखा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पता ही नहीं है, लोग उत्सव मना रहे हैं, कृष्ण के सालगिरह मनाई जा रही है, पहली सालगिरह, उसमें ऐसा तूफान आता है ना कि वो तूफान के गोल गोल में कृष्ण भी जूम ऊपर चले जाते हैं, उतना वर्त राक्षस जो है ना उसको उठा के ले जाता है, और इतना अंधकार इतनी धूल है कि किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, मैं नीचे रखे हुए कृष्ण जो है गायब है। तो हर एक राक्षस को कृष्ण ने बड़े अद्भुत तरीके से मारा, तो उनको पता नहीं था कि ये दावानल के रूप में राक्षस आया था, और राक्षस का भगवान ने वध किया पान करके। तो आचार्य बताते हैं कि अग्नि तत्व का शुद्धिकरण भगवान ने उस दावानल को पान करके किया, बड़े सबसे श्रेष्ठ पर्यावरणवादी भगवान है। मैंने कल भी बताया था, आप लोग यहां पर थे वृंदावन में, कि कालिया के कारण जो उन्होंने यमुना का जल का शुद्धकरण किया, तो जल तत्व को शुद्ध किया, मट्टी खाकर और ग्वाल बछड़े खुद बने ना वो एक बार, तो बछड़े के रूप में हर एक भूमि को चाट चाट कर उन्होंने पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया, जल तत्व को कालिया के लिए किया और तनावर्त के रूप में वायु तत्व को सिद्ध किया, व्योमासुर को मार के अवकाश तत्व को सिद्ध किया और दावादल पान करके अग्नि तत्व को सिद्ध किया। पूरे पंच महाभूतों को उन्होंने अपनी लीलाओं से सिद्ध किया। तो उसके बाद में ना, अभी हम आज शाम को और एक जगह जाएंगे, दावानल कुंड पे, वहां पर भी भगवान ने दावानल को पिया है, लेकिन दोनों में फर्क है। पहले जहां पर किया ना, उधर सबके आंखों के सामने किया, और सेकंड टाइम जब आग लगी ना, तो उनको पता था कि ये लोग जाके सब बोलते हैं, कोई सीक्रेट रखते ही नहीं है, सब जो भी कुछ हुआ यहाँ का सब जाके बोलते हैं। तो अगली बार क्या क्या, बहुत सावधानी से भगवान ने कहा, आग लग रही है चिंता मत करना, आंख बंद कर लेना। सबने आंख बंद कर दिया और आंख बंद करके सब उन्होंने अग्नि पाठन किया और फिर बोला आंख खोलो, सब अग्नि नष्ट हो गए थे। तो कैसे किया, कैसे किया, कर दिया, अभी पता नहीं कैसे किया, कर दिया। तो कोई किया वही, लेकिन उनके अप्रोक्ष किया। तो ये किस जिला कौन सी होगी, पांचवी होगी ना, बाबा नल का पान के यहाँ पर। फिर एक राक्षस आया था ना, वो बछड़े के रूप में आया था, वो मैंने काम्य वन में कल कथा बताई उसकी। तो वो सुबह निकले थे और वो एक बछड़ा ऐसा था जो बहुत, उसकी आंखें ऐसी क्रूर और भयंकर लाल कोयले की तरह, ऐसे बड़े बड़े अलग पैर के कान थे उसके। तो बहुत देर खेल खेलने के बाद में कृष्ण बलराम को डाउट आया, तो कृष्ण बलराम ने कृष्ण के कान में कहा, वो कौन है? तो कृष्ण ने देखा उसको, तो वो हमारे साथ सुबह नहीं आया था। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, करोड़ों अभी आपके साथ में इतने लोग आए, कोई एक आदमी क्लेम कर सकता है कि आपको एक आदमी को सबको सब पता है कि कौन आए थे सुबह और कौन बस से नहीं चला? बहुत पूछना पड़ता है, तुम्हारा साथी आया क्या, तुम्हारा साथी आया क्या, करके कंफर्म करना कि सब लोग आ गए। लेकिन एक व्यक्ति अगर जय भारद्वाज को बोला जाए कि आपको सबका नाम और पहचान होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, क्या करेगा बेचारा? वो हमारा जैसा कलयुग का जीव है, वो कैसे सबको करेगा? लेकिन कृष्ण बलराम को करोड़ों गोपियों में से और ग्वाल बालों में से और बछड़ों में सबकी पहचान थी, इसलिए वो कह पाए कि ये बछड़ा सुबह हमारे साथ में नहीं आया था। सुबह भगवान ने उसका वध कर दिया, बट लंबी कहानी उसकी, कैसे वध कर दिया, घुमा फिरा के। और वत्सासुर का वध किया तो बछड़े का वध किया ना, तो बछड़ा बनकर आया था, मेल काऊ बेबी काऊ। तो ये सब जो संकट आया, तो संकट के समय सब लोग कृष्ण बलराम महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो कैसे पुकारते हैं, और उनका हो गया काम, फिर उसके धार्मिक खोट निकालते उसके अंदर, रिलीजियस ब्रेकिंग ऑफ प्रिंसिपल। तो बड़े ऐसे शान से आ गए, मैंने इतना बड़ा काम किया, सब लोगों को राक्षस के दंड आतंक से बचाया, उसका वध कर दिया, लीलाया। तो गोपियों के पास आए, गोपियों ने बात नहीं करना हमसे आपको, तो क्या हो गया? तो तुमने बैल के बछड़े को मारा, धर्म का प्रतीक है वो, पिता है धर्म, धर्म पिता, बैल को धर्म पिता मानते, उसका पूजन करते हैं। तो नहीं, वो राक्षस था, कंस का भेजा हुआ दूध था वो, थोड़ा हम नहीं जानते हैं, हमारे लिए बैल पूजनीय है। तो जब मारने को आया तो पूजनीय नहीं था, मर गया तो पूजनीय हो गया। लीला है भगवान की। तो अभी भगवान कहते, ठीक है तुम बोल रहे हो तो ठीक है, मानता हूं मैं कि वो बैल था, बछड़ा था, मार दिया मैंने उसको, करना क्या है बताओ, बहस करने से लाभ क्या है, ये सच है वो सच, मानता हूं मैं, चलो क्या करना है बताओ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आप बोल रहे बात नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, दूर रहो, तुम पापी हो गए हो, दूषित हो गए हो, वो सब मुझे पसंद नहीं, आप बताओ दुष्टों निकालना कैसे। उन्होंने कहा, आपके पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है ना, वो सब में जाकर आपको स्नान और दर्शन करना पड़ेगा, तीर्थाटन करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अरे अगर मैं जाऊंगा तो आप बोलेंगे आप तो गए नहीं, आप तो चीटर हो, ऐसे ही घूम के आके बोला सब जगह कर लिया, तो मैं आपके सामने करूंगा अभी, तो आप भी यकीन हो जाए। सारे तीर्थों को यहीं बुला लिया भांडेरवन में, जितने भी पर्वत है, तीर्थ है, सरोवर है, समुद्र है, नदियां हैं, नद है, वो सबको बुला लिया और बंसी से कुआं खोदा और सबको बोले जाओ कुआं के अंदर। तो सारे लोगों ने तीर्थ में कुएं में प्रवेश किया। तो वो जो है ना, वो विचित्र बनाया उसके ऊपर, वो बेणु कूप है, बेणु कूप, बेणु से बनाया हुआ कूप। और कृष्ण भगवान ने उसमें स्नान किया और सब ग्वाल बालों ने भी उसमें स्नान किया और भगवान शुद्ध हो गए, मतलब वो गोपियों ने सर्टिफिकेट दे दिया, साइन एंड डिलीवर्ड। अभी क्या है ना, अभी हमारे अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है, वहां पर सब अथॉरिटी गोपियां ही है, जो बोलेंगे वो साइन, जैसे बोलेंगे वैसे ही, एवरीथिंग इज ऑल देयर फॉर अथॉरिटीज, होगी ना, प्रेम का अधिकार है वो, प्रेम होने से सारा अधिकार प्राप्त होता है उनको, भगवान भी उस प्रेम की वजह से उनके अधीन रहते हैं, उनके बन जाते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे नाच करते रहते हैं। तो वो है वेणुकूप, जिसके अंदर भगवान ने स्नान किया, सारे तीर्थ वहां पर विराजमान है, और यहाँ की बहुत पुरानी ऐसी एक क्या कहते हैं आख्यायिका ऐसी है कि सोमवती अमावस्या, पता है आपको वो क्या होती है, सोमवार को जब अमावस्या आती है ना, वो दुर्लभ दिन है, वो हर सोमवार को अमावस्या नहीं आती है, किसी किसी सोमवार को आती है, वो बहुत बड़ा पवित्र दिन है हमारे लिए, खाली शंकर भक्तों के लिए नहीं, हमारे लिए वो पवित्र दिन है, वहां पर उस दिन जो भक्त भजन करते हैं बहुत लाभ मिलता है, उस दिन जो व्रत भी रखते हैं, शिव जी को जाके पूजन करते, जल चढ़ाते हैं, बहुत आवश्यक है करना। हाँ, ये मत सोचना कि हम कृष्ण भक्त हैं तो शिव जी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, देवी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, गणेश जी को क्या पूछने की जरूरत है, सब हमारे मालिक कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो मालिक ने सबको अपना अधिकार देकर रखा है, मालिक ने उनको एम्पावर करके पोजीशन देकर रखा है, आपको तो नहीं दिया ना पोजीशन, उनको दिया है, तो सम्मान करना जरूरी है उनका। तो सोमवती अमावस्या के दिन ना ब्रज में कई चमत्कार होते हैं, कई जगह पर चमत्कार होते हैं, अरे आपको विश्वास नहीं तो आ जाओ सोमवती अमावस्या यहाँ पर, और मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, वहां जाओ और देखो क्या क्या होता है। वो जितने जलाशय है ना, जैसे कि राधा कुंड है, और ऊंचे गांव में त्रिवेणी कूप है, ऊंचा गांव में हम गए नहीं भी, ऊंचा गांव ललिता जी का गांव है, वहां पर भगवान ने गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों को प्रकट किया था, एकत्र किया था, संगम प्रकट किया था, और उसको एक कुएं में भेज दिया था, उसका नाम है त्रिवेणी कूप। और राधा कुंड में भगवान ने अरिष्टासुर को मारकर बहुत सुंदर राधा कुंड श्याम कुंड बनाया था, उसमें भी 84,000 तीर्थ जो है प्रवेश कर चुके थे, और यहाँ पर वेणुकूप में भी प्रवेश कर चुके हैं, है ना, ऐसे सब पवित्र स्थान सब जगह, कुछ जगह बहुत जगह इकट्ठा हुए हैं। उस दिन क्षीर सागर जो भी उसके अंदर उपस्थित है, उसके वजह से दूध निकलता है, उन स्थानों में बाढ़ आती है, मतलब ये कुआं में बाढ़ आ जाती है, वस्तु पूरा भर जाता है, राधा कुंड के अंदर भी भर जाता है, अपने आप अंदर से पानी भर जाता है, और वो जो क्षीर सागर जो उसका हिस्सा है ना, ये दूध का सागर है ना, उसके अंदर से दूध निकलता है, और वो दूध की धार सब लोग देखते हैं, उसके अंदर छलांग लगाते हैं उसके अंदर उस समय। ये सब दिव्य घटनाएं हैं, श्रद्धा होगी और आपको समय होगा आइए और देखिए खुद, मैंने दर्शन किया है राधा कुंड में। हाँ, ऐसे रात को राधा कुंड के आविर्भाव के समय पर वाइट मिल्क कम्स आउट, लोग वेट करते रहते हैं, पहने हुए कपड़े से छलांग लगाते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि वो दिव्य समय के प्रभाव से सारे जो तीर्थ उसके अंदर विराजमान है वो भी एक्साइट हो जाते हैं, दे गेट वेरी हैप्पी, और उनके वो आनंद की वजह से, आनंद की विघोरता की वजह से वो सब परिणाम दिखाई पड़ते होते हैं। तो इसे इधर भी सोमवती अमावस्या के दिन बाढ़ आती है कुएं को और सफेद पानी बाहर आता है, अब नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा आपको, रेमनेंट भी नहीं मिलेंगे उसको, चमत्कार है भगवान का। तो उस दिन ऐसी भी आख्यायिका है कि जिनको पुत्र न संतान नहीं होती ना, वो सोमवती अमावस्या के दिन आके उसका मुहूर्त देख के सुबह पूजा करते हैं और उनको संतान प्राप्त होती है, ऐसी भी आख्यायिका है। बहुत लोगों ने आके कोशिश किया, कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को भी होने वाला है, श्रद्धा होनी चाहिए ना बेटे, वो डाउट करके नहीं करना है, होगा क्या होगा क्या पता नहीं क्या आगा, नहीं लेट अस ट्राई, ऐसा नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ में करना है। भगवान है ना आपके श्रद्धा को ही प्रतिसाद देते हैं, श्रद्धा होगी तो सब कुछ आपको मिलेगा भगवान के विषय में, और भगवान के विषय में आपको डाउट रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तो भगवान को क्या जरूरत है, आपको श्रद्धा नहीं तो वाई शुड ही रिस्पॉन्ड टू यू, शुड नॉट बाउंड टू यू, हम लोग कौन होते हैं आप उनको डाउट करने वाले, डाउट कर रहे हो ठीक है सो जाओ, आई एम ओब्लाइज टू दोज हु हैव फेथ इन मी, एंड देन आई विल शो ऑल द मिरेकल्स टू दोज हु हैव फेथ इन मी। हो गया, अभी प्रलंबासुर का हो गया, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला हुई है, आप उस मंदिर में गए थे ना, उसे सुन रहे थे ना, परिक्रमा किया क्या उस मंदिर का आपने अंदर से, नहीं किया ना, उसमें ना बहुत चित्रपट है सुंदर सुंदर। एक तो यहाँ पर भगवान ने शादी में मांग में सिंदूर भरा राधा रानी के, तो उसका दर्शन है उस मंदिर में, कृष्णा राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं, मतलब विवाह कर रहे हैं। इस जगह पर एक बार ना कृष्ण बलराम आए और सब ग्वाल बाल भी आए और सखियां भी आई थी। तो भगवान हमारे कैसे ना कभी कभी बहुत मूड में आते हैं, वेरी प्राउडली कम्स। तो सब गोपियां कह रहे, अरे इतना क्यों उतरा रहे हो? तो अभी अभी कुश्ती खेल के आ रहा हूं। अच्छा, तो एकदम सरप्राइजिंगली ना वो गोपियां कहती हैं, इतना तुमको अपनी कुर्मी कुश्ती के बल पर विश्वास और गर्व है ना, हमसे कुश्ती खेलो। आप बोलेंगे क्या माए हाथ का खेल है, एक टोपियों को क्या करूं मैं? तो बोले ठीक है। तो उन्होंने अपना जो धोती वोती था ना वैसा उठा के, ऐसा वर्णन ऐसा उठाकर मल्ल की तरह बांधा उसको, ऐसा पूरा वैसे ना सर का पेटा उठा के या बांधा बांधा ऐसा पूरा एकदम, ऐसे ना जल में कैसे उड़ते समय कैसे करते हम लोग मेक और होल्डिंग टाइट। तो भगवान ने भी उठाया और गोपियों ने अपना वस्त्र उठा के मल्ल की तरह पर उसका ऐसा काष्ठी बांध के उसको पूरा, सब लोग मल्ल के रूप में आ गए। और ऐसे एक जगह गोपियां बैठी हैं जैसे ग्वाल बाल बैठे हैं और ये अखाड़ा बन गया उसका बीच में, और कृष्ण बेचारे अकेले सब लोग देख रहे हैं उनको। उनको भी बहुत बड़ा विश्वास है कि ये क्या गोपियों को एक हाथ से तिरस्कार कर दूंगा, है ना। अभी भगवान कुश्ती खेल रहे हैं, सोने का समय नहीं है, अभी कुश्ती खेलने वाले देखो आप। तो एक गोपी आई, अरे ऐसे एक दो के सेकंड के अंदर भगवान को उठो घुमा के चिटपट कर दिया, पूरा आसमान दिखा दिया। ये क्या हो रहा है? उतने में वैसे करते करते चली गई, दूसरी आ गई, उसने भी ऐसा दंड उतने होता ना वो टॉक टॉक, अभी आवाज नहीं कुछ पहना ना ऐसे हमको भी आदर करने के लिए, ऐसे कर करके कुपी आ गई, उसने भी कुछ क्षण में उनको चिटपट कर दिया। ऐसे देखते देखते सारी गोपियां ने भगवान को चिटपट कर दिया, भगवान को धोबी पछाड़ करने के पहले ही धोबी पछाड़ खुद, लास्ट में राधा रानी आ गई। अरे कहते हैं ना वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में, अभी बोले फाइनल में कम से कम कुछ ना कुछ तारे दिखाऊं अपने। राधा रानी ने बड़ी ही आसानी से कृष्ण को चिटपट कर दिया, कृष्ण हार गए पूरा। उसका कहते हैं मल्ल लीला, भगवान ने यहाँ पर मल्ल लीला किया। अभी देखो एक नाखून के ऊपर हाँ गिरिराज को धारण करते हैं, सात दिन सात रात, कितना शक्ति है उनके अंदर। तो गोपियां तो ऐसे कमल की तरह मुलायम, लेकिन वो जानबूझ के उनके साथ हारते हैं प्रेम की वजह से। अगर मुझे उनको मुझको धोबी पछाड़ देने से चितपट करने से आनंद है, मैं हारने को तैयार हूँ। गोपियों को ग्वाल बालों को आनंद मिलना चाहिए, यही मेरे जीवन की तमन्ना है। इसलिए होली में भी हारते हैं, इधर भी हारते हैं, और हम लोग उनकी हार पर हा हा करके हंसते हैं। हंसे कि ना आप देख रहे हैं उनको, देख रहे हो कि आप हंसी जोर जोर से, लेकिन आप वो हंस रहे हैं वो भी उनको खुशी है कि मैं गोपियों से हारा, ये जग जाहिर हो जाए, दुनिया को पता चले कि मैं गोपियों से हारता हूँ, मैं कंस को एक मुक्के में मार देता हूँ, हरिष्ठासुर को पूछ पकड़ के आकाश में घुमा के पटक कर पेशाब और चट्टी करते हुए खत्म कर सकता हूँ, लेकिन गोपियां आएंगी तो मैं हार जाता हूँ। तो वो प्रेम से नहीं आ रहे हैं, उनको अलग तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, और ये लोग प्रेम से आ रहे हैं तो प्रेम का रिस्पॉन्स देते हैं। प्रेम का सही अर्थ यह है कि प्रेमी जो हमारा प्रेमी है उससे हम हारना पसंद करते हैं, और करना चाहिए अपने प्रेमी जनों के साथ में बार बार वाद विवाद करके जीतना नहीं चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू रियली लव समबडी एंड यू कम टू नो कि आई कैन डिफीट बट आई विल लाइक टू गेट डिफीटेड, ऐसा करेंगे ना तो आपकी विवाह संस्था सफल हो जाएगी। आमतौर पर सफल ऐसे ही होती है, पता है ना आपको, एक व्यक्ति ऑर्डर देता है और दूसरा सुनता है, उसी में विवाह का यश छुपा हुआ है, समझे ना आपको। ज्यादा मैं गहरा गहराई में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सक्सेसफुल रहना आपको गृहस्थी में तो सबसे बड़ी चुप्पी, सबसे बड़ी चुप्पी होगी आपकी गृहस्थी सफल हो जाएगी, और लोगों को लगेगा क्या आपका राज क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने केवल मौन धारण किया था, उन्होंने आदेश देते रहे, मैंने मौन धारण किया, यही हमारे विवाह की संस्था की यश की रहस्य की गाथा है। तो जोक्स अपार्ट बट सीरियसली क्या समझना हमको, मतलब प्रेम हम जरूर में करते हैं, वास्तव में करते हैं, तो प्रेमी व्यक्ति से जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हार भी होगी तो भी मंजूर होना चाहिए दिल से, तो प्रेम बना रहता है, प्रेम की वृद्धि होती है। ठीक है, कितनी लीला हो गई, यहाँ पर ना श्री कृष्ण बलराम जब जा रहे थे मथुरा के लिए, है ना, वो ककरू जी आए ना उनको लेने के लिए, कंस ने तो बोला कि अरे, कंस ने बोला कि ये हर बार मैं आदमियों को भेजता हूँ तो वो कोई हर टाइम उनका रिटर्न टिकट फेल हो जाता है, हाँ ऐसे बेकार रहता है, कोई लौट के आता ही नहीं है, ओनली वन वे टिकट काम में आता है, रिटर्न टिकट फेल। तो सोचा उसने बहुत बार बैठ के क्या कारण होगा, हाँ वो उसके होम ग्राउंड पे युद्ध हो रहा है ना, इससे वो उनको मार देता है, अभी मैं किसी को यहाँ से वहां नहीं भेजूंगा, मैं उनको यहाँ बुलाऊंगा अपने होम ग्राउंड पे, तो यहाँ पर उनको मारना आसान हो जाएगा। देखो राक्षस कैसे सोचते रहते ना, व्हाट टू डू, उनकी इच्छा है सोच सकते हैं, लेकिन होम ग्राउंड पर भी चितपट होके मर गया वो बेचारा। तो वो कंस ने वहां पर धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था और कहा था कि बच्चों को देखने को अच्छा लगेगा ना, इसलिए अक्रूर को भेजा, बोला बच्चों को बुला लो, उनको भी आनंद आएगा, क्योंकि तो हमारे तंबी तो है वो। तो अक्रूर जी जा रहे थे लेके कृष्ण बलराम को रथ में बिठाकर, तो लंबी कहानी, बहुत गोपियों ने उनको रोका, फिर बहुत सारा चक्र हुआ उसके अंदर। लेकिन जब यहाँ से गुजर रहे थे, सुदामा यहाँ पर खड़े थे, सुदामा कौन है बताइए, सुदामा राजा रानी के बड़े भाई हैं, कृष्ण के परम प्रिय सखा है, नारद मुनि ने उनको वरदान दिया था कि तुम कृष्ण के सबसे प्रिय सखा होंगे। और कृष्ण के तीन प्रकार के सखा होते हैं, एक होते हैं समवयस्क, यानी कि सेम उम्र के होते हैं, तो उनके कंधे पे चढ़ते हैं, अब तो ताने देते हैं, गाली देते हैं, मुक्का मारते हैं, कुछ भी करते हैं। एक होते हैं छोटे उम्र के, वो हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं, सुदामा मैं नहला रही है तो टॉवल खड़े होते हैं, सुगंधित द्रव्य खड़े होते हैं, कपड़ा लेके खड़े होते हैं, अलंकार ऑलवेज इन सर्विस, रेडी टू सर्व, छोटे है ना उम्र में। और एक बड़े होते हैं उनसे, वो उनकी रक्षा की भावना में रहते हैं हमेशा, मैया कहते तुम बड़े हो ना, बल्लाव जी तुम बड़े हो ना, तुम बड़े हो ना, मंडली भद्र तुम बड़े हो ना, देखो तुम्हारा काम ये नटखट कृष्ण को ध्यान रखना, तो कहीं जमुना जी में कूद न जाए, कहीं यहाँ से कूद न जाए, यहाँ से आग ना पी ले, यहाँ पर मट्टी ना खा ले, ऐसे तो वो रक्षा में रहते हैं हमेशा, यार ऑलवेज इन प्रोटेक्टिव मूड। तो ये जो थे ना वो समवयस्क ग्रुप में सबसे बेस्ट सखा थे कृष्ण के। राजा रानी के जन्म के समय पर नारद मुनि ने उनको वरदान दिया था ये कि तुम कृष्ण के सबसे बड़े प्रिय सखा हो जाएंगे। तो सुदामा जो थे ना बड़े इतना प्रेम करते थे कृष्ण के ऊपर कि दिन भर तो खुश रहते थे, लेकिन शाम को जब घर जाने का समय आता था ना तो वो दुखी होना आरंभ करते थे और रात रात कर जग जग के रोते थे कृष्ण के हृदय में कि कब मिलेगा, कि सुबह का समय गोपाल ग्वाल बालों का, रात का समय गोपियों का, तो ऐसे सखाते वो। तो वहां खड़े थे वो जा रहे हैं रथ पे बैठकर, तो कृष्ण बलराम बोले कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर, क्योंकि अभी मथुरा में जाकर धनुर्यज्ञ देख के आऊंगा, परसों लौट के आऊंगा, एक दिन के बाद लौट के आऊंगा। तो वो इतने प्रेमी भक्त है, भगवान के मित्र हैं, वो कह रहे देखो जब तक आप नहीं आओगे ना तो मैं यही खड़े रहूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा ना कुछ करूंगा, यहीं बैठे रहूंगा, तुम नहीं आएंगे तो जिंदगी भर यहीं बैठे रहूंगा। तो वहां पर एक वट का वृक्ष है, जैसे यहाँ पर वट का वृक्ष है ना, वहां पर भी वट का वृक्ष है, उसका भी नाम भांडेर वट है। तो भांडेर वट पे सुदामा जी वेट करते रहे और भगवान दो दिन के बाद में आए क्या, भगवान 112 साल के बाद में आए, तब तक वो यहीं रहे। तो दो कथा उसकी ऐसी है कि उसके पास सुदामा जी वैसे ही खड़े रहे भूख प्यास सबको छोड़कर, तो जब दंत वक्र को मारने के बहाने कृष्ण आए तो उन्होंने सबकी मुलाकात करके सबको उद्धार करके गोलोक भेज दिया। और एक कथा उसकी ऐसी है कि भगवान ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु ने आके उनको आलिंगन दिया सुदामा को और उनको गोलोक भेज दिया। दोनों कहानी अलग अलग समय पर हुई है तो सत्य है वो कहानी, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है कि भगवान का प्रेम कैसा होता देखो, वैसे उन्होंने डायलॉग नहीं मारा, हम कैसे बोलते हैं आपके लिए चांद सितारे लेके आएंगे, ऐसे प्रेम में लिखते हैं ना कविता में, आप कहो तो चांद भी लेकर आए आपके लिए, तो कहते हैं कि पहले वो महंगी सब्जी तो ले आओ फिर चांद के बाद आगे करेंगे, वो दूध बहुत 90 रुपए का हो गया वो तो ले आओ पहले A2 वाला, तो वो तो बोलने की बातें है दुनिया में, सब कहानी कविता ऐसी होती है, लेकिन भगवान की कथा में ऐसा नहीं होता है, तो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे मराठी में क्या कहते हैं मालूम है आपको, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, जो बोलता है वैसे ही करता है वो वंदनीय हो जाता है, उसके चरण को वंदन करना चाहिए, बहुत विरला लोग होते हैं ऐसे, और सब लोग ऐसे हैं ब्रज में। तो उन्होंने कहा मैं कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा, वैसे खड़े हो गए वो भूखे प्यासे। और एक व्यक्ति है पूछ रिकाल उठा बाबा,
वो गोवर्धन के एंड में बैठे हुए, वो भी बोल रहे थे कहाँ जा रहे हो, आज मेरा टर्न है, मेरे घर से खाना आने वाला था आज। बोले एक दिन मैं आ जाऊंगा, आप रुको। बोले आओगे ना, मैं यहीं बैठाऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। वहीं बैठ गए वो, और भगवान की हृदय में हजारों सैकड़ों साल वहीं पर रहे वो, उनका अभी भी मूर्ति है। तो वो जगह है जहां पर सुदामा ने अपने प्रेम और संयम का दर्शन कराया है। और एक लीला है उसी पर जगह पर कि भगवान ने वहां पर रास रचाया है, भगवान ने वहां पर रास रचाया है। इसलिए वो भानिरवट जगह जो है जहां पर हम जाएंगे अभी प्रसाद के बाद, वो भगवान की रास स्थली भी है। भगवान ने वहां पर रास रचाया है, भोजन भी किया है, रास भी रचाया है, और सुदामा के इंतजार की भी स्थली है। कितने हो गए, 10 हो गए ना पूरे, 10 हो गए पूरे, 9 हो गए, 10 बार बोलना पड़ेगा, मतलब क्या करें अभी। तो ये जो स्थान है वो तो निर्माण होने की कथा मैंने आपको बताई कि भाई इस समय पर वो निर्माण हुआ, लेकिन वो चिरंतन स्थान है। भगवान की इच्छा से लुप्त होता है तो भगवान उसको पुनः लीला करके प्रकट करते हैं, लेकिन है तो चिरंतन स्थान, क्योंकि पृथ्वी पर जब गौलोक वृंदावन आकर बसता है तो किसी प्रलय में, मिनी प्रलय, महाप्रलय में वो नष्ट नहीं होता है, खाली नजरों से उजल हो जाता है, और भगवान फिर आते हैं, फिर उसको प्रकट करते हैं। तो जब ये चिरंतन समय पर उपस्थित है, तो सत्ययुग में जब मत्स्य अवतार हुआ था, सत्यव्रत राजा था ना उस समय, उसके पहले वो कटोरी में आया, फिर बर्तन में आया, फिर इसमें आया, फिर उसमें आया, फिर कुएं में आया, तो वो उस कुएं में आया। आप सुनते हैं ना वर्णन, पहले घर में भगोने में था, बड़ा भगोने में हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर बाद में एक जगह पे कुएं में डाल दिया उनको, फिर कुएं से नदी में चले गए, नदी से सागर में चले गए, फिर सागर भी नाप लिया पूरा उन्होंने। तो वो जो कुएं का वर्णन है वो कुआं है। इसमें मत्स्यावतार जब पर्याप्त साइज में आ गए तो वेणुकूप में उन्होंने आश्रय लिया था। और एक भी और कथा है उसकी, जिसे किसी मुनि ने यहाँ पर बहुत घनघोर तपस्या की है, मैं भी वो भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़ी तपस्थली भी है, बहुत साक्षात्कार की स्थली है, बहुत दिव्य स्थली है। तो इतने सारे लीलाएं भगवान करते हैं, तो भानिर वन भगवान को बड़ा प्रिय है, और 12 वन भगवान को बड़े प्रिय हैं, जो 108 वन में 137 वन है वैसे, उसमें से 108 बहुत ज़्यादा प्रिय है, 108 में 12 वन सबसे ज़्यादा प्रिय है, और वो 12 में से 7 वन जो है वो यमुना के पश्चिम साइड में है, और 5 वन यमुना के पूर्व साइड में है। तो ये वन जो है वो यमुना के पूर्व साइड में है। इस साइड में भांडीर वन, बेल वन, भद्र वन, और कुमुद वन, और ताल वन, ये सब इस तरफ है। मैं गलती कर सकता हूँ इसमें, लेकिन 7 इस तरफ है और 5 उस तरफ है। जब वृंदावन में हम जाएंगे ना आज शाम को, तो वृंदावन में जो यमुना दिखती है आपको, यमुना जी के उस पार में हम लोग बैठे हैं। आप यमुना जी के उस पार में भांडीर वन, बेल वन है, अभी वृंदावन जाएंगे तब, अभी हम इस पार आ गए हैं, अभी शाम को उस पार जाएंगे जहाँ वृंदावन है। तो ऐसा ये ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, यमुना जी बीच में बहती है, भगवान के हर लीलाओं को साक्षी बनते हुए, सहायक बनते हुए, आनंद को वर्धन करते हुए यमुना जी भगवान का लीला में सहायता करती है। बोलो भांडीर वन धाम की जय, जय श्री राधे श्याम।